ये जो पहलवान थे बहुत बड़े बड़े और कठोर शरीर वाले थे, लेकिन फिर भी उनके पैर से पैर मिलाकर, जानू से जानू, सिर से सिर, छाती से छाती और एक दूसरे को खींचने लगे, पटकने की चेष्टा करने लगे, जैसे पहलवान करते हैं। कभी कभी छाती सट जाती थी, कभी हाथ, कभी सिर भी आपस में टकराता था, परंतु चारूण और मुष्टि को भगवान का स्पर्श, श्री बलराम जी का स्पर्श वज्र जैसा लगता था। पर ये युद्ध देखने वाले लोग हाहाकार करने लगे, अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। परिभ्रमण विक्षेप परिरंभाव पात नहीं, लगे युद्ध करने। परिभ्रमण, परिभ्रमण का अर्थ है घुमाना, बाह पकड़ करके और घुमाना, और विक्षेप, विक्षेप का अर्थ है दूर हटाना, दूर झटकना, और परिरंभ और कभी आलिंगन में पकड़ करके पटकने की कोशिश करना, और अवपातन और कभी पटक देना, उत्सर्पण कभी ऊपर उछलना, अपसर्पण कभी आगे बढ़ना कभी पीछे होना, प्रत्यरुंधताम कभी दूसरे के प्रहार को रोकना, उत्थापनई जब कोई गिर जाता था नीचे छाती के बल पर तो दूसरा उसे उत्थापन करता था, उठाता था जोर लगाकर। ये दोनों हो रहे थे परस्पर, कुछ देर दंगल का आनंद भगवान ने लिया, शुरू में ही उनका वध नहीं किया, खूब मजे में चल रहा था युद्ध। उत्थापन उन्नयन, उठाना चाहता था, खींचना चाहता था परस्पर सभी दोनों, चालन और चालित करना, उसको छाती के तरफ करने का मतलब सुचित करना हम लोग कहते हैं। भगवान वैसे गिर जाते हैं खड़ा में छाती के बल, तो उसको उठा करके उत्तान किया जाता है, ये कर रहे। परस्परम जिगी संतो चक्रतुरात्मना, इस तरह से परस्पर एक दूसरे को जीतने के लिए जो भी मल्ल युद्ध हो सकते हैं, जितनी कलाएं हो सकती हैं, सब कलाओं के साथ चारुण और मुष्टि, चारुण और कृष्ण लड़ने लगे तथा मुष्टिक और बलराम जी, ये दोनों भाइयों का युद्ध है, दोनों से एक साथ ही हो रहा था, एक साथ चालू हुआ था। श्री बलराम जी मुष्टि के साथ यही सब कर रहे थे युद्ध, और श्री कृष्ण चारुण के साथ। बड़े भाग्यशाली थे वे लोग जो देख रहे थे इस युद्ध, और युद्ध होते होते, पहलवानी होते होते श्री कृष्ण के मुख पर पसीना आने लगा, और श्री बलराम जी के मेहनत पड़ने लगी मनुष्य लीला के अनुसार, लेकिन पहलवानों को भी बहुत मेहनत पड़ने लगी। कभी कभी एक दूसरे के सिर शरीर पर मारते थे मुष्टिका से, कभी तमाचा भी मारते थे, इसलिए ये जो युद्ध करने वाले पहलवान थे कृष्ण बलराम को मारना चाहते थे, शुरू में चाहते थे कि ऐसा मारे मर्म स्थान पर कि मर था, लेकिन जब वे मारना प्रारंभ किए तब सभा के लोग देखे कि ये तो क्रीड़ा नहीं हो रही है, ये तो वास्तव में युद्ध होने लगा। कुछ लोग कहने लगे इसको रोकना चाहिए, रोकना चाहिए, रोकना चाहिए, अधर्म हो रहा है, अधर्म हो रहा है। भगवान के प्रति और श्री बलराम जी के प्रति ममता उमड़ गई सबकी, यह अधर्म हो रहा है, ये क्रीड़ा नहीं हो रही है, ऐसे थोड़े मल्ल युद्ध किया जाता है। कुछ लोग तो बड़े विकल हो गए भगवान की इस विवशता को देखकर, परंतु उसमें से सबको मालूम नहीं था कि ये भगवान है और अभी अभी इसका वध कर देंगे। भगवान इस प्रकार की लीला करके मनुष्यों के हृदय में अपने प्रति एक स्नेह पैदा करते थे। भगवान की यह एक लीला भंगी है, वास्तव में वे संवेदना पैदा करना चाहते थे, और श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार का भाव, संवेदना, उनके प्रति दया, स्नेह, यही है अध्यात्म की ऊंचाई। भगवान के प्रति जितनी ही ममता जिसके हृदय में है वो उतना ही ऊंचा साधक है, वो उतनी ही भक्ति है वास्तव में। तो पूरे उस सभा में बैठे हुए लोग कृष्ण के प्रति दया से भर गए, वात्सल्य से। उस बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, उन दोनों बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, ये कहने लगे। और किस तरह से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो तद बला बलवर युद्धम समेता सर्वयोषित ऊचु परस्पर अंगाधन शान पंपा वरोध। सबसे पहले स्त्रियों ने कहना चालू किया, क्योंकि स्त्रियों का हृदय कोमल होता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बल और अबल का यह युद्ध देखकर, बलवान और निर्बल का यह युद्ध देखकर, सर्व योषित सारी स्त्रियां जो बैठी थी उस सभा में, ऊंचे परस्पर राजन हे महाराज परीक्षित, वे आपस में कहने लगी, साल कंपा वरुद, कृष्ण और बलराम के प्रति अनुकंपा भर गया हृदय में, स्नेह उमड़ गया, और वे स्त्रियां आपस में कहने लगी, महानयम बता धर्म ईशान राज सभासदाम, ये बला बलवत युद्धम राज्यो अमिच्छन्ति पश्यतः। ओहो, राजा की सभा में महान अधर्म हो रहा है, जबकि अधर्म करने वाले लोग राजा के दरबार में दंडित होते हैं, लेकिन राजा की सभा में ही अन्याय हो रहा है। ये बहुत शोक की बात है, बहुत दुख की बात है, इस राज्यसभा में अन्याय हो रहा है, दुख की बात है। वापस में सारी स्त्रियां इस तरह से कहने लगी, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है, कहां ये बलवान पहलवान और कहां कमजोर बच्चे। उसी को स्त्रियां कहती हैं, को वज्र सार सर्वांग मल्लव शैलेन्द्र सन्निभव, कहां वज्र के समान कठोर अंग वाले ये पहलवान, पर्वत के समान ये पहलवान, और कहां क्वचात सुकुमार आंगो किशोरव नाथ जौवनव, और कहां ये बच्चे जिनका अंग अति सुकुमार है, जिनका हाथ पैर सब कुछ अति सुकुमार है, किशोरव ये किशोर है, नाथ जौवनव अभी युवक नहीं हुए, युवक होते तो चलो युद्ध कराते, लेकिन ये अति सुकुमार शरीर वाले हैं, बच्चे हैं, और इनके साथ इन पहलवानों का युद्ध हो रहा है, बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है। किशोरव नाप्त जौवनो, ये किशोर है, न आप्त जौवनो, जौवन को प्राप्त नहीं है, आप्त या प्राप्त दोनों का एक ही अर्थ होता है, अभी तो ये जवान भी नहीं हुए हैं, और देखो सके कितना बड़ा धर्म होने लगा। धर्म व्यतिक्रम यस्य समाजस्य ध्रुवं भवेत्, निश्चित ही समाज में बैठे हुए सबको महापाप लगेगा। इस सभा में यदि इसका विरोध नहीं किया जा रहा है तो सबको ये पाप लगेगा। ये नीति शास्त्र कहता है कि जिस समाज में कोई गलत काम हो रहा हो और उस समाज में कोई व्यक्ति उसको मना नहीं करता है, केवल देखता है, तो उसको भी उतना ही पाप लगता है। जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण जब दुशासन कर रहा था, यद्यपि सबने वस्त्र हरण नहीं किया, लेकिन उस सभा में जो लोग चुप रह गए, विरोध नहीं किए, उन सबकी आयु उसी समय क्षत कर दी गई, कचस्पर्श क्षतायुष। भागवत में लिखा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है कि जो लोग उस सभा में बैठे थे जिन्होंने विरोध नहीं किया, उन सबको कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैं मरवा दूंगा, केवल द्रौपदी के केसों का आकर्षण करने के कारण। जबकि एक व्यक्ति केस खींचा था, लेकिन सब लोग देख रहे थे, क्या जरूरत है देखने की, चले जाते या विरोध करते। ये नियम है कि किसी सभा में अन्याय हो रहा हो तो शक्ति हो तो विरोध करना चाहिए, और नहीं तो सभा से बाहर चले जाना चाहिए, नियम। लेकिन वास्तव में वहां बैठे हुए लोग, महाभारत में जहां द्रौपदी का केशाकर्षण किया जा रहा था, तो सब लोग दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बैठे थे, वो देखता था कि कौन कौन लोग हाजिर है। हाजिर नहीं होने का मतलब था कि वे लोग हमारे एक्शन का विरोध कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो सब लोग दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बैठे, इसलिए वो पाप लग गया। राजा की चापलूसी इस तरह से लोग करते हैं, फ्लैटरिंग करते हैं। धन के लिए या पद के लिए जैसे भी राजा को खुश करना चाहते हैं, परंतु अधर्म का कभी अनुमोदन नहीं करना चाहिए, चुपचाप उठ कर चले जाना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि यहां जितने लोग सभा में बैठे हैं सबको महापाप लगेगा और उस महापाप के कारण उनकी दुर्गति होगी परलोक में। सभा कहीं भी सभा होती है, चाहे छोटी सभा हो चाहे बड़ी सभा हो, सभा में अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्याय, चोरी या लंपटता कोई मनुष्य अकेले में करता है तो राजा उसको दंड देता है। जब राजा के समाज में ही अन्याय हो रहा है तो प्रजा किसके शरण में जाएगी, किससे फरियाद करेगी, किससे न्याय की याचना करेगी। राजा का किस प्रकार लोग अभिनंदन करते हैं या उसकी खुशामदी करते हैं, इस विषय में एक हमारे यहां कहावत है, काजी की कुतिया मरी थी तो पूरा गांव दफनाने गया, लेकिन काजी मर गया तो एक भी आदमी नहीं गया। कहता है एक काजी था, काजी मुसलमानों में छोटे शासक को कहते, काजी की खुशामद करते थे लोग, एक गांव में रहता था। काजी की एक बार कुतिया मर गई और कुतिया को दफनाने के लिए काजी जा रहा था, तो गांव के सब लोग गए। काजी देख ले कि ये जुलूस में आया है, कुतिया को दफनाने में सब लोग आए, लेकिन जब काजी मर गए तो एक भी आदमी नहीं गया, क्योंकि अब तो काजी देख नहीं रहा था तो मर गया। तो उसके कुतिया वो दफनाने गांव के सब लोग गए, लेकिन राजा मर गया, काजी मर गया, कोई नहीं, तो कोई बात नहीं, तो देख नहीं रहा। तो इस तरह से लोग राजा की खुशामद किया करते हैं। स्त्रियां कह रहे हैं कि अब निश्चित अधर्म है, पाप है। जत्र अधर्म समुत्तिष्ठे न स्थेयम तत्र करिष्यति। जिस समाज में अधर्म होना चालू हो जाए उस समाज में करहिचित न स्थेय, कभी नहीं ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए, चल देना चाहिए। न सभाम प्रविशेत प्राज्ञ सभ्य दोषा न स्मरण। उचित तो यह है कि सभा के दोष को जानकर सभ्य व्यक्ति को सभा में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। यदि कदाचित भ्रम से प्रवेश कर गया है तो तुरंत निकल आना चाहिए। अब्रुवन विब्रुवन अज्ञ नरह के विषम अश्रुते। सभा में ही प्रवेश न करे, अच्छा यही है, क्योंकि उस अन्याय के विरुद्ध बोलेगा तब भी ठीक नहीं है और अनुमोदन करेगा तब भी ठीक नहीं है। यदि बलवान व्यक्ति अन्याय करा रहा है और उसका कोई विरोध किया तो विरोध भी ठीक नहीं है, तो विरोध करेगा तब भी ठीक नहीं होगा और चुपचाप रहेगा तो तभी ठीक नहीं है। विरोध करेगा तो राजा दंड देगा और नहीं विरोध करेगा तो जमराज जी दंड देंगे। इसलिए सभा में जाना ही नहीं चाहिए। स्त्रियां कह रही हैं वल्गत शत्रु अभित कृष्ण से बदनांगुज वीक्षता श्रमवालिप्तम पद्म को सरिनांगु। फिर स्त्रियां कहती हैं अरे देखो चारों के साथ पैंतरा बदलते हुए और लड़ते हुए कृष्ण के बदनांगुज को देखो, कमल के समान सुकुमार मुख है, तो बदनांगुज का अंबुज का अर्थ कमल, अंबु से जन्म होता है, जल से जन्म, कमल के समान अति सुकुमार मुख है कृष्ण का, श्रम वारी उत्तम। देखो देखो कृष्ण के सांवले बदन पर, बदनांगुज पर परिश्रम के जल व्याप्त हो गए। परिश्रम होने से जब शरीर से जल निकलता है तो उसको पसीना कहते हैं या श्रम जल, परिश्रम जल। तो कृष्ण के मुख कमल पर परिश्रम की बूंदे उभर आई हैं। पद्म कोशम मामू, जैसे पद्म कोश पर कमल के कर्णिका पर कोश पर जैसे जल की बूंदे ठहर जाए और सुंदर लगती हैं, वैसे श्री कृष्ण का मुख लग रहा है। दूसरी स्त्री कहती है, किन्न पश्यत रामस्य मुखमाताम्र लोचनम मुष्टिकम प्रतिसामर समहास सर्वम शोभितम। अरे बलराम के मुख को क्यों नहीं देख रही हो, उनका मुख क्रोध से लाल हो गया है तांबे की तरह, एक तो ऐसे ही गोरे और लाल है और अब मुष्टि के प्रति भगवान राम का क्रोध बढ़ रहा है। देखो क्रोध से उनका मुख लाल हो गया। अब इस प्रकार से अधर्म युद्ध को देख करके स्त्रियां कहती हैं, ओहो हरी सखी, इस संसार में सबसे भाग्य वाली कोई नारियां हैं तो ब्रज की नारियां, क्योंकि वे लोग उस समय श्री कृष्ण को देखती थी जब श्री कृष्ण आनंद में बांसुरी बजाते थे, प्रसन्न रहा करते। हम लोगों को तो विधाता ने ऐसे समय में दर्शन दिया है जब यह लड़का, जब यह पुरुष विपत्ति में पड़ा हुआ है, प्रसन्न में हम में है। ब्रज की स्त्रियां जो श्री कृष्ण के हंसते हुए गाते हुए मुख को देखी हैं, नाचते हुए परम प्रसन्न रहते हैं ब्रज में। ब्रज वृंदावन इनका अपना आवास स्थान है और आज ये परदेश में आ गए हैं, इनकी ये दशा हो रही है। मतलब वही लड़का, वही कृष्ण जो ब्रज में स्वच्छंद विचरण करते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और उस समय जो उनको देखती हैं वे स्त्रियां धाम में। हम लोगों को तो अनवसर पर विधाता ने दर्शन दिया, ठीक अवसर नहीं है। जब यह व्यक्ति संकट में है उस समय हमें दर्शन हुआ, क्या कहें। इसी पर ब्रज की स्त्रियों की महिमा गा रही है, कुंड्या बत ब्रज भूहो जदयम नृलिंग गूढ़ पुराण पुरुषो बन चित्र माल्य गा पालयन सह बल क्वयं चेणु विक्रीड़यन चति गिरी वर गिरी प्रदमाचितांघ्रिय। जानती हो सखी ये कौन है, ये है वह श्री कृष्ण जो ब्रज में विहार करते हैं और इनके चरणों की अर्चना शिव ब्रह्मा और लक्ष्मी करते हैं। गिरी गिरित्र रमा चेता है, गिरित्र कहते हैं भगवान शिव को, भगवान शिव इनके चरणों की आराधना करते हैं। ब्रज में ऐसी घटना होती रहती थी, प्रतिदिन भगवान शिव आते थे भगवान का दर्शन करने के लिए। अर्चित अंगली पूजित चरण कमल इनका है। ये ब्रज में रहते समय वनचित्र माल्य, वन में खिलने वाले पुष्पों की विचित्र मालाएं पहनते थे। गाह पालयन गौएं चराते हुए सह बल बलराम जी के साथ कोणयंश वेणु वेणु कोणन करते थे, वेणु बजाते रहते थे। कितने आनंद में कितना सुख में रहते थे और इस तरह विक्रीड़या क्रीड़ा करते हुए भ्रमण करते थे वन में स्वच्छंद में, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई टेंशन नहीं मन में, यह भाव आनंद से। ऐसे पुराण पुरुष को जो मनुष्य देश में विहार कर रहे हैं ब्रज में विहार करते हैं, उस समय ब्रज की स्त्रियां इनको देखती हैं धन्य है। और वास्तव में ब्रज भूमि धन्य है, पुण्यावत ब्रज भू ब्रज भूमि धन्य है, जिस भूमि में श्री कृष्ण आनंद से विहार करते हैं। देखो तो यहां तो इनको बाध्य किया जा रहा है लड़ने के लिए और वह भी बहुत बड़े बलवान के साथ, एक तरफ है श्री कृष्ण को भगवान कह रही है और दूसरे तरफ वात्सल्य उमड़ रहा तो कहती है ठीक नहीं। और यदि कृष्ण पुराण पुरुष है परब्रह्म परमात्मा है तो ये पहलवान क्या करेंगे उनका। लेकिन ये है मथुरा का भाव, मथुरा में ऐश्वर्य भाव भी रहता है और वात्सल्य भाव भी रहता है, माधुर्य भी रहता है। एक तरफ कह रहे हैं कि ये पुराण पुरुष ब्रज में विचरण करते हैं, सुख से बांसुरी बजाते हैं, खेलते हैं और आज बहुत बड़े दुख में पड़ गए। हम लोगों को जो दर्शन मिला है अनवसर पर दर्शन मिला है। मथुरा कोई दूर नहीं है वृंदावन से या नंदगांव से, लेकिन वन में ब्रज में भगवान स्वच्छंद विचार करते हैं और ये सिटी में आकर के फॉर्मेलिटी में फंस गए हैं। अपना वास्तव में जो घर होता है खास करके गांव में और वन में, तो वहां पर बच्चों का या लोगों का जो स्वच्छंद विचरण होता है वो अपने ही ढंग का है। शहरों में तो लोग रहते हैं, देखने में लगता है कि खुश हैं, लेकिन खुश नहीं रहते। न वो शुद्ध हवा मिलती है और न तो चिंता से मुक्त रहते। इधर तो मैं पूछता हूं आप खुश हैं तो प्रत्येक आदमी बताता है नहीं, ये घर का मॉर्गेज देना है तो बिल देना है तो ये देना है। स्वामी जी ये कार पर चलता हुआ देख करके आप मत समझिए कि लोग सुखी हैं या हम लोग सुखी ऐसा कहते हैं। लेकिन भारतवर्ष में तो गांव में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ आदमी भी आनंद से रहता है। एक बार हम लोग कुछ भक्त वृंदावन में बैठे थे शाम के समय और कुछ बातें हो रही थी, कुछ हास रस या कुछ ऐसा, तो सब खिलखिला करके हंस रहे थे, लड़के थे और सब खूब हंस रहे थे। एक इधर से भक्त गए थे अमेरिका से, वो कहते हैं उनसे कहे कि महाराज ऐसी हंसी अमेरिका में लोग नहीं हंसते। वो देख करके दंग हो गया कि इन लड़कों को कोई दुख है ही नहीं, इतना हंसते, स्वप्न में भी कोई दुख नहीं। इधर की हंसी शहर में क्या है, जैसे स्टूडियो में फोटो के लिए जाइए तो स्टूडियो वाला कहेगा कि जरा मुस्कुराइए, तो जोर लगा करके कभी मुस्कुराते वो मुस्कुराहट है, स्वाभाविक मुस्कुराहट हृदय से आती है। तो श्री कृष्ण वन में जिस तरह से खुश रहते हैं, खेलते हैं, किसी गोपी पर देखते हैं या गोप सखा के कंधे पर अपनी बांह रखते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, छिड़कते हैं, तो उस समय जो उनका दर्शन किया वे ब्रजवासी धन्य है और वह ब्रज भूमि धन्य है। ये मथुरा की भूमि किसी काम की नहीं है, जहां इस पुरुष को संकट का सामना करना पड़ रहा है। यहां आते ही धोबी गाली दिया तो धनुष की रक्षा करने वाले मारने दौड़े थे, तो गेट पर हाथी खड़ा किया गया था। ये भगवान की कृपा से सब जगह यह लड़का विजयी हो रहा है, परंतु तो फिर भी बहुत संकट है इसके सामने। तो धन्य है ब्रजभूमि और धन्य है गोपियां। गोप्यः तपः किम चरन जदनुस्य रूपम लावण्य सारम समोधमनं निषिद्धम दृग्धिः पिबन तनुसवाभिनवन दुरापम एकांत धाम जसह श्रिय ऐश्वरस्य। गोप्यः तपः किम चरन, अरे सखियों गोपियों ने कौन सा सुकृत किया था तो उनका जन्म ब्रजभूमि में हुआ। हम तो ऐसे शहर में जन्म ली है कि हम श्री कृष्ण को देख नहीं पाते, और देखने का भी अवसर मिला तो आज इस कठिन अवसर पर मिला जब यह पुरुष खुश नहीं है, दुख में, संकट में। गोपियों ने कौन तप किया था जो श्री कृष्ण के असमोर्थ लावण्य सार श्री विग्रह को देखती रहती। श्री कृष्ण का शरीर और उनका शारीरिक सौंदर्य असम ऊर्ध्व है। असम ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊंचा, सम का अर्थ समान। श्री कृष्ण के समान कोई सुंदर नहीं है, फिर उनसे ऊर्ध्व होने की तो बात ही क्या। असम ऊर्ध्व, लावण्य सार, लावण्य का सौंदर्य का सार है श्री कृष्ण का विग्रह ब्रज में। और अनन्य सिद्धम, न अन्य सिद्धम, अनन्य सिद्धम का अर्थ भगवान इतना सुंदर है तो उनकी सुंदरता अन्य सिद्ध नहीं है, स्वसिद्ध है, अपने आप सुंदर है। दूसरे लोग कपड़ा पहन करके गहना लगा करके सुंदर लगते हैं थोड़ा सा, लेकिन भगवान अनन्य सिद्ध अपने आप ही हैं, और उनकी सुंदरता अन्य वस्तु के कारण नहीं है। श्री कृष्ण के शरीर पर आभूषण जब डाले जाते हैं तो उससे आभूषण सुंदर लगते हैं, कृष्ण नहीं, भूषण भूषण। मनुष्य समाज में या देवताओं के समाज में जो सुंदरता है वह बाद में मिलती है और दूसरे के द्वारा, जैसे छोटा सा बच्चा जन्म लेता है मनुष्य में तो वो तो बिल्कुल कीड़ा जैसा रहता है, कोई सौंदर्य नहीं रहता है और ज्ञान नहीं रहता है, कोई बल नहीं, कुछ नहीं, न बैठने की शक्ति रहती है, न बोलने की, न खाने की। जब जरा उससे पूछिए कि कौन दिन है आज तुम जन्म लिए, आगे चल करके तो भारी प्रोफेसर हो जाते हैं, या ये मंत्री वो मंत्री बहुत बातें, लेकिन जिस दिन जन्म हुआ उस दिन कैसे थे। तो दूसरा व्यक्ति उठाता है बच्चे, जन्म देने वाली माँ भी बेहोश हो जाती है, दूसरी स्त्री उठाती है, सहलाती है, पूछती है उसके मन में, वो बच्चा एक दिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर बाद में तब कहता है मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। और यह जो सुंदरता है जीव की अपनी सुंदरता नहीं है, प्रकृति की सुंदरता है, प्रकृति फिर छीनेगी, तुरंत शरीर को बूढ़ा बनाएगी और काले काले केस सफेद हो जाएंगे, झुर्रियां पड़ जाएगी, और वो अभी नहीं रहने देगी प्रकृति, अंत में कब्र में या चीता में जाए। ये है सौंदर्य। यह पर सिद्ध है, मतलब दूसरे के द्वारा दिया गया है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है, और ये विकृत होता रहता है। काले में जातो विकृतो विनश्यति, काल द्वारा यह शरीर पैदा किया जाता है, बढ़ाया जाता है, और अंत में विकृत होकर के समाप्त। हम लोगों से पहले भी संसार में बहुत मनुष्य हो गए हैं, लेकिन वो सेट चला गया, नया सेट आया है मनुष्यों का, ये भी बीत जाएगा, इसके बाद दूसरा सेट आएगा, ये चलता रहता है। और इसी में लोग कहते हैं बहुत सुंदर है, बहुत ये है वो है, लेकिन सुंदरता सही समय नहीं रहती है। एक तो अधिक सुंदरता नहीं है, और रहती भी है तो विकृत होती रहती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य अनन्य सिद्ध, मथुरा की स्त्रियां कह रहे थे दृग्भी पिबंती अनुसवाभिनवम दुरापम, अनुसवम निरंतर तीन तीन टाइम कम से कम, श्री गोपियां भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य सुधा को नेत्रों से पीती रहती, पिबंती अनुसवम आंखों से पीती रहती, मतलब वहां गोपियों पर कोई व्यवधान नहीं है। ऐसे ब्रज में गांव में गोपियों पर बहुत बड़ा बंधन है, वो नहीं देख सकते कृष्ण को, क्योंकि उनके घर के लोग डांटते हैं, लेकिन वन में इधर उधर श्री कृष्ण को निर्बाध रूप से देखती है। श्री कृष्ण का वह रूप, वह सौंदर्य दुरापम दुर्लभ है। एकांत धाम जस श्री ऐश्वर्य, श्री का ऐश्वर्य का और जस का वो आश्रय है, निवास स्थान है भगवान का शरीर। मुझे समय नहीं है कि मैं यहां पर व्याख्या करूं, मैं आगे बढ़ना हूं, लेकिन वास्तव में भक्तों के समुदाय में जो चार श्लोक मथुरा की स्त्रियां बोली हैं, गाती हुई, इसकी व्याख्या तो चार दिन में होती है। भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रही है, लीलाओं का और सबका, लेकिन चूंकि हमको कुछ पूरा करना है, देवकी वसुदेव को कारागृह से छुड़ाना है, कल आज कम से कम कंस का वध हो जाना चाहिए, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मथुरा किस लिए आगे कहती हैं कि गोपियां धन्य हैं जो श्री कृष्ण की लीलाओं को रात दिन गाती रहती हैं। कैसे गाती हैं? यादो हने वहनने मथनो पले पा प्रेम खेखनाथ बुदितो क्षण मार्जना दो गायन्ति चैन मनुरक्त धियो सुखंजो धन्या ब्रज स्त्रिय गुरु क्रम चित्तयाना। धन्य है ब्रज की स्त्रियां, ऐसे ब्रजवासी भी सभी धन्य है, लेकिन वास्तव में ब्रजवासियों में मुकुटमणि श्री गोपियां हैं। धन्य है गोपियां गुरु क्रम चित्तयाना, जिनके चित्त पर गुरु क्रम चढ़े रहते हैं, विविध लीला विलासी भगवान हमेशा जिनके मन में थिरकते रहते हैं। बच्चे को पकड़ के बैठाओ, क्यों छोड़े हो उसे? जिसका बच्चा देख करके पकड़ो। गुरु क्रम चित्त या श्री कृष्ण हमेशा गोपियों के चित्त में छाए रहते, अर्थात भगवान की सुमधुर लीलाएं श्री गोपी जनों के हृदय में हमेशा उभरी रहती है। तो जो दोहने आवहन में गाय दूहते समय, दही मथते समय भी भगवान कृष्ण की लीलाओं को गाती रहती, कौन लीलाओं को? जो ब्रज में होती रहती उन लीलाओं को गाती रहती, उन्हें कविता बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। कथा गान आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो व्यक्ति बोलता है वो कविता में बोलता है। हम लोगों ने देखा है हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे लोग जो बात करते हैं तो काव्य में बात करते हैं, उनको आशु कवि कहते हैं। वृंदावन में एक बनमाली दास शरण शास्त्री थे, तो वे संस्कृत बोलते थे और कविता में बोलते थे। एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति बने थे हमारे देश में, तो उनका स्वागत भाषण उनको करना था बनमाली शरण शास्त्री, वैसे खड़े हुए और पहले से कुछ नहीं बचे थे, धारावाहिक कविता में उनका अभिवादन करने लगे, संस्कृत कविता में। इस प्राकृत जगत में भी ऐसे लोग होते हैं, अप्राकृत जगत में प्रत्येक व्यक्ति कविता में बोलता है, तो गोपियां गाती ही रहती है। दोहने गाय दूहते समय, गाय दूह रही हैं और गा रही हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई आवश्यक नहीं है कि अपना काम धंधा छोड़ करके और गेरुआ कपड़ा ले करके भभूति रमा करके भजन किया जाए। दोहने गाय दुहते समय, अवहन में धान कूटते समय, कोई चावल कूटते समय ढेकी से, इधर के जो लोग ढेकी भी नहीं जाने की ढेकी क्या चीज है ना, दे दीजिए। धन्य है वे लोग जो गांव में जन्म लिए हैं और देखे हैं ये सब चीज, नहीं तो ये तो शहरों में देख सोच सुनने के बाद भी कोई सोच नहीं पाएगा। मिल में सब कुछ हो जाता है, मिल में क्या, इधर तो मिल में कूटते हुए लोग नहीं देखते हैं, सीधा स्टोर में चावल आ जाता है। एक बार मैं एक भारतीय व्यक्ति के घर में गया था, यहीं अमेरिका में, एक बच्चा था लगभग 10 बरस का होगा, तो मैं उसको सिखा रहा था कि तुमको वेजिटेरियन आहार करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, और बता रहा था कि गाय हमारी माँ है। तो पूछे कैसे माँ है? तो गाय दूध देती है, दूध पी करके हम लोग बड़े होते हैं। तो वो कहता है कि दूध गाय से आता है, मैंने पूछा कि तुम क्या समझते हो, तो कहता हूं तो स्टोर से लाते, हमारे डैडी स्टोर से लाते। स्टोर में आता है लेकिन गाय दूध देती है वहां से आता है, तो आई डोंट नो। वो हैरान हो गया मेरी बात सुनकर, गाय से दूध आता है, काऊ से दूध आता है, वो देखा है केवल स्टोर से लाते हैं। तो जो व्यक्ति गाय को दुहना देखा ही नहीं है वो क्या एक कथा समझेगा बताइए। देखा नहीं तो गोपियां गाय दुहते समय भी भगवान का यश गाती रहती थी, लीला गाती रहती थी। ये सब देखना चाहिए। और कूटते समय ढेंकी कहते हैं, एक लकड़ी होता है लंबा और उसके अगले सिरे में एक पिस्टल जैसा लगा रहता है और बीच में दो खंभे होते हैं इधर, खास करके स्त्रियां कूटती है, इधर उठाती है तो अगला सिरा उठता है, छोड़ देते ही गिरता है, तो उससे धान के छिलके निकल जाते हैं, चावल आ जाता है, चाहे और भी अनाज कूटते कूटती है। उसको अवहनन कहा। और जांता चलाते समय, चक्की चलाते समय हाथ से पहले पीसा जाता था, आटा पीसा। अभी हम लोगों के होश में ये सब चीजें बिल्कुल सुलभ, आप सब लोग मथनों पर दही मथते समय, उपलेप घर लिपते समय या शरीर को, शरीर में कुछ चंदन आदि लगाते समय, प्रेम और झूला झूलाते समय, बच्चों को झूला झूलाते समय कृष्ण की लीला गाते थे, उनको चुप कराते हैं सुलाते हैं, या स्वयं झूला झूल करके वे गाते रहते। क्षण स्नान करते समय, घर में पानी छिड़कते समय, वार्जनाद घर गुहारते समय गायंती स एनम अमृत भियो अश्रु कंठे, श्री गोपियां कृष्ण की लीलाओं को गाती रहती थी और अश्रु कंठ, कंठ में आंसू भर जाता था, गला गदगद हो जाता था और मन भगवान में लगा रहता। धन्या ब्रज स्त्री, धन्य है ब्रज की स्त्रियां, अरे सखी हम धन्य नहीं है, हम हतभागिनी हैं कि हमारा जन्म मथुरा में हुआ, क्यों नहीं विधाता हमारा जन्म ब्रज में हुआ। इस तरह से मथुरा की स्त्री कह रही, जबकि भगवान को देख रही है पर अनवसर पर देख रही है। प्रातर्ब्रजाद् ब्रजतया विशतश्च सायं गोभिः समं क्वणयतोऽस्य विषम्य वेणुं निर्गम्य तूर्णमबलः पतिभूरि पुण्यः पश्यन्ति सस्मितमुखं सदयावलोकम्। प्रातः काल श्री कृष्ण सखाओं के साथ ब्रज से वन में जाते हैं और सायं के समय वन से फिर ब्रज में लौटते हैं। लौटते समय अपने परम सुंदर मुख में वेणु धारण किए रहते हैं और बहुत सुंदर स्वर में गाते हैं। उस समय अपने अपने घरों से निकलकर श्री गोपियां श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं। कितना उनको सुख होता है, निश्चित ही कोटि कोटि जन्मों में उन्होंने बहुत बड़ा सुकृत किया होगा कि श्री कृष्ण को वन से लौटते हुए देखती हैं, गाते हुए प्रसन्न भूरि पुण्या पश्यन्ति सस्मित मुखं सदयावलोकम्। और श्री कृष्ण भी मुस्कुरा करके गोपियों को देखते हैं, अपने मन का अभिप्राय व्यक्त करते हैं और गोपियां देखती हैं, धन्य है गोपियां इस जगत पर जो श्री कृष्ण को इस तरह सुखी देखती है। इस प्रकार जब स्त्रियां बहुत ही कोमल हृदय से भगवान के प्रति सस्नेह बातें कर रही थी तो भगवान इसको सुने, और सुन करके उन्होंने सोचा कि बहुत देर तक इनको दुख में नहीं रखना चाहिए, बेचारी बहुत रो रही है, छटपटा रही है, दुखी थी। यद्यपि वो उच्च स्वर से नहीं रो सकती थी मथुरा की स्त्रियां, लेकिन बेचारी बहुत दुखी थी। तब भगवान चारुण को मारने का संकल्प कर लिया, बहुत देर तक दुख में नहीं रखना है। एवं प्रभासमानासु स्त्रीषु योगेश्वरो हरिः शत्रुम हन्तुम मनश्चक्रे भगवान भर्तृषभ। हे महाराज परीक्षित, जब योगेश्वरेश्वर हरि इस प्रकार स्त्रियों की बात को सुने तब अपने शत्रु को मारने का मन में ठान लिए, स्त्रियों का दुख दूर करना। सभया स्त्री गिरह श्रुत्वा पुत्र स्नेह सुचातुरौ पितरौ अन्वतप्येताम् पुत्रयो लब्धौ बलम्। और उन स्त्रियों के सभय बात को सुनकर वसुदेव जी और देवकी और नंद महाराज बहुत विकल हो गए। वसुदेव जी रोने लगे और माता देवकी के स्तनों से दूध चुने लगा, स्नेह आंसू बहने लगे। वसुदेव जी प्रकट नहीं बैठाए गए थे, स्टेडियम के पीछे उनको बैठाया गया था, देख नहीं रहे थे। सुन करके स्त्रियों के बाद देवकी वसुदेव रोने लगे। अब देखिए किस तरह से पुनः युद्ध हुआ। तैस्तय नियुद्ध विधि भीर विविध रचुते तरो जुयुधाते जथानम्यम तथैव बल मुष्टिकौ। मल्ल युद्ध के जो भी नियम है वे सब नियमों के साथ यहाँ तक कि कुछ अधर्म पूर्वक भी दोनों में युद्ध होने लगा, चारुण और कृष्ण में और बलराम जी में और मुष्टिक में। पहले जैसा प्रस्ताव था कि यहाँ क्रीड़ा करना है, क्रीड़ा पार कर गया, अब एक दूसरे को मारने के का खुलम खुला दाव पे चालू हो गया। भगवान मन में ठान लिया मारना है, किस तरह से मार रहे हैं सुनिए। भगवत गात्र निष्पात वज्र निष्पेश निष्ठुर। भगवान के हाथ का, उनके मुष्टिका का वार और तमाचा वज्र का सार जैसा लग रहा था चारुण को, और ऐसा लगने से अब उसका सारा देह टूटने लगा। अरे अनंत बल है भगवान में, देखने में हाथ छोटा है लेकिन जब गिरता होगा उसके देह पर तो आप ज्ञानी बवा पा। उसके मन में होने लगा कि हाय रे बाप, मैं क्यों इस लड़के से भिड़ा है। ये कह रहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा और मैं बरबस इसको लड़ाया बरबस इसको लड़ाया। वो इस तरह से ग्लानी मवाप भगवत गात्र निष्पातर वज्र निष्पेश निष्ठुर। वज्र निष्पेश, वज्र निष्पेश का अर्थ है कि वज्र को भी जो पीस सकता है, मारने को धूर कर सकता है, ऐसा भगवान का अंग था, कठोर हाथ पैर पैर और हाथ था। तो उसे भज्यमान चारुणो भज्यमान अंग बहुत ग्लानी हुआ, बहुत ग्लानी हुई उसे। अब लगा कि हाय रे बाप, अब नहीं बचूंगा। अच्छा उस समय भी अगर वो युद्ध छोड़ दिया होता तभी भगवान उसे नहीं मारते, लेकिन अब वो अपनी इज्जत बचा रहा था। अब कैसे भागे, ये कैसे कहे कि हम अब हार गए या थक गए, हम नहीं लड़ेंगे, माफ करो। अब अपनी मिथ्या इज्जत को बचाने के लिए फिर भी लड़ रहा है। ससेन वेग उत्पत्ति मुष्टि कृत्य करा उभव। तो एकाएक जैसे बाज पक्षी उड़ता है और प्रहार करना चाहता है, वैसे दृष्टि बचाकर कृष्ण के और कृष्ण के छाती में दोनों हाथ जोड़ कर ऐसे और मारना चाह जोर से। जो ही मारना चाहते ही भगवान उसके हाथ को पकड़ लिए, दोनों बंधे हुए हाथ को, और उसको ले करके दोनों हाथ से भगवान ऐसे ऊपर घुमाने लगे। इतना जोर से घुमाए, इतना जोर से घुमाए कि भ्रामरस्तिक्त जीवित ऊपर ही उसके प्राण खत्म हो गए। बहुत तेज घुमा दिया भगवान ने, ऊपर मर गया और मरे हुए शरीर को इसके बाद पटके वहीं पर था। अच्छा उधर बलराम जी, जब बलराम जी ने देखा कृष्ण इस तरह से मारे हैं, तो बलराम जी अपने हाथ का ऐसा तमाचा मारे कि वो खून फेंकता हुआ मुष्टि को वहीं पर मर गया, गिर गया। अब तो सभा के लोग जय हो लगे बोलने, यहां तक कंस के जो आदमी थे वो भी लगे जय जय बोलने उषा ऋषि। अब क्या करे कंस, इस तरह से युद्ध हो जाए। भगवंतम वासुदेव क्रुद्धो बक्षस तायरतम ना चलत तत् प्रहार। एक बार वो मार दिया भगवान को, लेकिन भगवान को वो प्रहार ऐसा लगा जैसे लगा कि माला से हाथी को मारा गया, फूल की माला से जैसे कोई हाथी को मारे, वैसे चारुण की मुष्टिका भगवान के छाती पर लगी, तो बिल्कुल कोमल लगा। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते माला हता युवत विपद, माला से जैसे हाथी को मारा जाए वैसे अपने दोनों मुष्टिका का वार बहुत जोर लगाकर कर किया। लेकिन बाहो निगृह चारुणम बहुसो भ्रामयन हरि, बाह पकड़ करके बहुस भ्रामयन, बहुत तेज गति से घुमाए और कई बार घुमाए और उसी में वो मर गया। भूपृष्ठे पोथे आमास, भूमि पृष्ठ पर अखाड़ा में नहीं, बगल में जो पत्थर था उस पर पटका भगवान ने जोश, बहुत जोर से ऐसे फेंका, निकट ही नहीं और जगह पर। तरसा छीण जीवितम, वह छीण जीवित मतलब जीवन समाप्त हो गया। विश्रस्त विश्रस्तम आकल्प केशस इंद्र भरिया, इसके बाल बिखर गए थे, आभूषण टूट गए थे, जैसे इंद्र ध्वज गिरे एकाएक, बहुत बड़ी पताका गिरे वैसे गिरा। तथा वो मुष्टिका, जब देखा कि चारुण दोनों मुष्टिका से मारा बलराम जी को, अरे कृष्ण को, तो मुष्टिक भी ऐसा ही किया। तथा वो मुष्टिका पूर्वम रे पिता स रुधिरम उद्भमन मुख तोर दिता पपात विपस्ते वाता हते आंधी बह, जैसे बहुत बड़े आंधी के वेग से कोई वृक्ष उखड़ जाए और गिरे एकाएक, उस तरह से हाय हाय करता हुआ गिरा मुष्टिक। तमाचा लगने से श्री बलराम जी का तमाचा बहुत प्रसिद्ध है, वो तो साक्षात बल ही है। ततः कूटमन उपराक्रम राम प्रहर तांबर, इसके बाद कूट आया लगे थे, चारुण मुष्टिक सौल तोसल और कूट, ये पांच पहलवान स्पेशल रखे गए थे कंस के द्वारा कृष्ण बलराम को मारने के लिए। तब कूट आया बलराम से लड़ने, वो सोचा कि अभी थका है, अभी थका है, अभी लड़े, मतलब मुष्टिक को मारने में थक गया है तो मैं चलूं। हो गया तो आते ही उसको बाम मुष्टियां, बाएं मुष्टिका से बलराम जी ने मारा, उसका सिर फट गया, वहीं गिर गया, उसको लड़ने नहीं दिया बहुत देर तक। अब बहुत रफ्तार से जो चालू हो गया तब तेज गति हो गई। तरहे वही सलाह कृष्ण पदाह शीर्ष कह दीघा विदीर्ण कौशल का उभाव अपनी निवेदत, सल आया लड़ने के कृष्ण से। भगवान ने देखा कि बड़े भाई मुष्टिका से मारे तो ये अपने पैर से ऐसा जोर से मारे फुटबॉल जैसा कि उसका सिर फट गया, वही मर गया। तो सल भी ठीक वैसा ही है, तो उसको एक पैर से मारा था भगवान ने दाहिने पैर से, और बाएं पैर से मार, दोनों एक साथ लड़ने के लिए आए कृष्ण के पास, दोनों एक साथ लड़ेंगे और इसको मार देंगे पटक देंगे, तो दोनों को दोनों पैर से ऐसा जोर से मारे कि दोनों के सिर द्विधा हो गए दो खंड में और दोनों मर गए, पांच पहलवानों की लाश हो गई। और उधर जय जय कार सब होने लगा, हो रहा था बीच बीच में, यदि कुछ लोग डर कर बोल रहे थे लेकिन और लोग तो आनंद में बोल रहे थे। पांच लड़ने के लिए आए और ये दशा हो गई। निताई गौर हरि चारों में मुष्टि के कूटे सले तो सल के हते श्रेषा प्रदु मल्ला सर्वे प्राण परिपवा। तो और भी सैकड़ों मल थे वहां बैठे थे, बारी बारी से लड़ेंगे, लेकिन जब ये पांच सबसे बड़े बड़े पहलवान मर गए तो शेषा प्रदुद्रुवल शेष भाग गए धीरे धीरे इधर उधर निकल करके, ये सब अब मरे क्यों, हम समझ गए कि कोई भी इनसे पार नहीं पाएगा, तो सब भाग गए। कौन मरने जाए यहां पर, रखे गए थे लड़ने के लिए पहलवानी दिखाने के लिए, लेकिन सब भाग गए। शेषा मन बचे हुए लोग प्रदुद्रुव, प्रकर्षण दुद्रुव बहुत तेज गति से भाग गए। वो लोग समझ गए कि अब कौन से मारा जाएगा, इसलिए भागने में उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी कि बाद में कौन से पकड़ेगा और ये करेगा। सर्वे प्राण परिश्रम, क्योंकि बेचारे प्राण बचाना चाहते थे, जीना चाहते थे। गोपान वयस्या नाकृष्ट संसृत विजर। फिर दोनों भाई कहे कि अब हम दंगल दिखाते हैं, अपने सखाओं को कहे चलो आओ अखाड़ा में सब। तो गोप सखाए आने लगता आ गए और उनके साथ कृष्ण बलराम लड़ने लगे, और उस लड़ाई में भगवान दिखा रहे हैं कि गोप उनको पटक रहे हैं लड़के पटक रहे हैं। भगवान कभी पटकते हैं, कभी वो पटकते हैं, कभी ये वो, ऐसा होने लगा। और पांच पहलवानों की लाश को एक किनारे कर दिए गए, युद्ध हो रहा है, अब वास्तविक क्रीड़ा हो रही, खूब खेले भगवान सखाड़ा खींच कर। वो लड़के नहीं आ रहे थे तो भगवान कृष्ण और बलराम जी खींचे आसन से, आओ और आओ राजा को दिखाना है। अच्छा, जब दोनों विहार करने लगे भगवान कृष्ण और बलराम, तो बाजा बजाने वाले जो लोग पहले से नियुक्त किए गए थे बेचारे ने भूल गए कि कंस की पराजय हो रही है, नहीं बजाना चाहिए। वो सब बजाना चालू किए, ढाई ढाए ढाई ढाए जोर जोर से। कृष्ण बलराम के इस विजय पर और बच्चों के साथ जो विहार किए तो सब बाजा बजाना चालू किए। वाद्य माने सुर जेसु बलगंत रुत नूपुर, नूपुर चरण में था ही, नाचने लगे अखाड़ा में और बाजा बजने लगा, सब बजाने वाले खड़े हो गए, गाने लगे। जना प्रज हेसु सर्वे कर्मणा राम कृष्ण, कृष्ण और बलराम के कर्म से सभी जनता प्रसन्न हुई, केवल रीते कंसम विपमुख्या साधु साध साधु, केवल एक व्यक्ति प्रसन्न नहीं हुआ वो कंस। कंस को छोड़ करके सब लोग प्रसन्न हो गए और ब्राह्मण जो बैठे थे वे कहने लगे साधु साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब भय नहीं रहा कंस का, अब सबको विश्वास हो गया कि कृष्ण मारेगा कंस को। जब ये चारूर मर गया तो अब कंस भी मरेगा, ये विश्वास हो गया, इसीलिए भय समाप्त हो गया। सब लोग जय जयकार करने लगे। हतेशु मल्लवर्जेशु विद्रुतेशु च भोजराज, जब सारे पहलवान मार दिए गए और कुछ लोग भाग गए, मतलब पांच मार दिए गए और भाग गए, तो इसके बाद अकस्मात कंस बाजा बजाने वालों को सबसे पहले डांटा, बंद करो, किस कारण से बजा रहे हो, मूर्ख कहीं के, इसी के लिए रखा गया था तुम लोगों को, तुम लोग कृष्णदास हो कि कंस दास हो। वो रोक रहा था लेकिन बजाने वाले तो मस्त बजा रहे, खूब बड़बड़ा रहा था, बक रहा था। नेवारे सुतुर जानी वाक्यम छेदम वाच, वो मना किया बाजा को और बोलने लगा, थोड़ा लोग दब गए। बाजा जब बंद हो गया तो कहता है निसारे तो दुर्वृतम, इन दोनों खलों को दुराचारियों को यहां से बाहर करो। मंच पर बैठे बैठे बोल रहा था, इन दोनों को यहां से बाहर करो, निसारे तो निकाल दो, निसरण कर दो। दुर्वृत्त, इनका वृत्त इनका आचरण बहुत दूषित। वसुदेव आत्मजो पूरा, इस मल्ल सभा से ही नहीं मथुरा से इनको बाहर करो, कोई है कोई वहां क्यों सुनने जाए, सब डर कर भागे कि उसकी आज्ञा पालन कर, इनको यहां से बाहर करो। बक रहा है धनम हरत गोपानाम, गोपों का धन हर लो, यह नंद आदि गोप आए हैं। नंदम बधनित दुर्मति, ये दूषित मति दुष्ट नंद को अरेस्ट कर। कौन आज्ञा पालन करने वाला था, लेकिन बक रहा था इस तरह से। वसुदेव वस्तु दुर्मिध्या हन्यतामासु सपन, वसुदेव सबसे खल है, दुष्ट शिरोमणि है, दूषित बुद्धि है उसकी, उसका वध कर दो। और उग्रसेन जो मेरा पिता जेल में बंद है उसकी भी जान मारे, उन लोगों के पक्ष में रहता है, इस तरह से बक रहा था। एवं विकत्थ माने भाई कंसे प्रकुपित हो गए, इस प्रकार से जब बक रहा था, जब उस देव जी को पूरा कहा, नंद महाराज को, उग्रसेन जी को, तब भगवान अब कुपित हो गए, प्रकुपित हो गए। देखे सब लोग भगवान की आंखें अब लाल लाल, और वहां से भी उछले जोर से, वो बहुत ऊंचा मंच पर था, भगवान ऐसे जोर से उछले, और जब जा रहे थे ऐसे उछल करके तो तुरंत तलवार लेकर खड़ा हो गया भगवान से लड़ने के लिए। भगवान उसके तलवार का वार बचा करके और ऐसे मुकुट को पहले फेंके, हाथ से हटाए, हाथ हटा करके केस पकड़ लिए, केस पकड़ करके और वहां से अखाड़ा में पटके जोर से ऊंचे मंच से, और पटकने के बाद वो स्वयं ही उसके छाती पर कूदे बहुत जोर से, और कूदने मात्र से कंस मर गया। और मर गया तो उसके मरे हुए शरीर को भगवान उस अखाड़ा में खूब खींच रहे थे, मर गया था उस समय भी क्रोध में खींच रहे थे। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं खींचने के कई कई भाव हैं, उस समय जब खींच रहे थे वो मर गया तो हा हा शब्द भी बहुत निकला, और कंस की स्त्री आए और लोग भी थे, सब हाहाकार करने लगे, लेकिन बाकी लोग तो जय जयकार करते लगे, तो हा हा कुछ लोग कर रहे थे, हाय 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 राजा मारा गया राजा, और कुछ लोग तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहे। तो जैसे सिंह हाथी को मारकर खींचता है उस तरह से भगवान उसको अखाड़ा में खींच रहे थे। तो उसके आठ भाई थे कंस के, अपने बड़े भाई को मरा हुआ देखकर सब हथियार लेकर के आए लड़ने के लिए, लेकिन लड़ने के लिए आए तो श्री बलराम जी ने हाथी दांत से ही सब पर एक एक बार मारा, आठ बार में सब ज्यादा नहीं मारा, इस तरह से किया। अथाति रहुतांतस्तु संयतां रोहिणी सुतः अहं परिघम उद्यम्य पशु निव मृगाधिपः। यहां लिखा गया है कि परिघ से मारे, परिघ का अर्थ वही हाथी दांत है, हाथी दांत से इतना जोर जोर से मारे कि संभाल जाए। ने दुर्दुम दुभय उद्यम निव, आकाश में देवता लोग बाजा बजाने लगे, कंस जब तक जीवित था तब तक नहीं बजा रहे थे, डर लगता था उनको, अब फ्री देवता लोग बाजा बजाने लगे, अब पृथ्वी पर भी बजने लगा। और कंस की स्त्रियां बहुत विलाप करने लगी, अपने पति के मरण के दुख से दुखित होकर के छाती पीटती हुई स्त्रियां आई, कई स्त्रियां थी कंस की, वे रोती हुई आती, और भी जो वीर मरे थे पहलवान उनकी स्त्रियां और जो लोग मरे थे सबकी स्त्रियां आई, और अपने अपने पतियों के शव को पकड़ करके और विलेपुर सुस्वरम उच्च स्वर से रोने लगे, बार बार आंसू बहा रही थी, रो रही थी, कहती थी, हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणा नाथ वत्सल, हे नाथ हे प्रिय हे धर्मज्ञ, अरे वो बहुत धर्मज्ञ थे, यहां धर्मज्ञ कह रहे हैं, वास्तव में ऐसा ही कहना चाहिए, चाहे पति या पिता कितना भी पापी रहा हो लेकिन कहना चाहिए धर्मज्ञ थे। जैसे हम लोगों के भारतवर्ष में कोई व्यक्ति मर जाता है, भले पापी हो नरक में गया हो लेकिन बेटा लिखता है कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, यही लिखता है, कभी नहीं लिखा कि हमारे पिताजी का नरकवास हो गया है, आप लोग आइए हमारे स्वर्गवास चाहे वैकुंठवास गंगा लाभ गंगावास, यही लिखता है। स्त्रियां कह रही हैं हे धर्मज्ञ हे धर्म के जानने वाले करुणा नाथ, आप बहुत करुणा करने वाले थे, वत्सल थे आप, बहुत वत्सल थे, देवकी के पुत्रों को जेल में मार डाले वो बहुत वत्सल थे, त्वया हतेन निहता वयम ते सक्रिय प्रजा, आपके मारे जाने से हम सब मर गए, त्वया विरहिता पत्या कुरियम पुरुष न शोभते वयम यो,
निवृत्तोत्सव मंगल।
अब मथुरा आपके बिना शोभित नहीं होगी, अब यहाँ कोई उत्सव नहीं होगा। जैसे हम विधवा हो गए वैसे मथुरा भी विधवा हो गई। अनाग शांत होता नाम कृतवान प्रभुपण, लेकिन सत्य बोल रही है इसको या बाजी कहती है, आप निरपराध प्राणियों को सताए तो देवकी वसुदेव को इतना दिन कारागृह में रखना, उनके पुत्रों को मारना, उस पर कह रहे कि आप बेअपराध प्राणियों को सताए थे, द्रोह किए थे, इसीलिए आपकी ये दशा हो गई। तेने माम हो दशा में तो भूत ध्रुव को लभे। दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति कभी भी सुख नहीं पा सकता है। आप राजा थे, सब कुछ थे, लेकिन आपने निरपराध है लोगों को बहुत दुख दिया था, इसीलिए आपकी ये दशा हुई। यह वास्तव में बिल्कुल सत्य सिद्धांत है। दूसरों को सुख देने पर सुख मिलता है, दुख देने पर दुख मिलता है। हम लोगों को इस संसार में जो कुछ भी मिला है, पहले जो हम दिए हैं वही मिला है, आज जो देंगे तो बाद में मिलता है। सिद्धांत है। कंस की इस दुर्दशा को देखकर उसकी स्त्रियां कहती हैं कि आप निरपराध प्राणियों को सताए थे, दुख दिए थे, इसीलिए आपकी ये दुर्दशा हुई। भूत ध्रुव को लभे सब, प्राणियों को सताने वाला कैसे सुखी हो सकता है। जो लोग गाय खा रहे हैं, गाय का मांस खा रहे हैं, ये लोग तो बहुत दुख भोगेंगे। उस दुख की कोई सीमा नहीं, चाहे किसी भी प्राणी को सता रहे हैं, दुख तो भोगना ही है। सर्वे साम्य भूतानाम ही प्रभुवाक्य, यह काल समस्त प्राणियों को उत्पन्न करता है, विनष्ट करता है, श्री कृष्ण ही काल है। गुप्ता चतत अवध्यायी मन प्रश्चित सुख नहीं होता। कृष्ण के नियमों का की अवहेलना करने वाला, भगवान के दल द्वारा बनाए हुए नियम की अवहेलना करने वाला कभी सुख से नहीं रहता है। इस प्रकार कंस की स्त्रियां और भी लोर हो रही थी, तो चूंकि अब कंस के परिवार में कोई बचा नहीं था, सब मार दिए गए थे, इसीलिए भगवान उन सबके द्वारा मरे हुए अपने मामा लोगों की अंत्येष्टि क्रिया करवाए। वो सब परिवार के लोग थे, मामा थे, लेकिन भगवान भी नौ मामा लोगों को मारे, और मामा इनके सब भाइयों को मारे थे। तो इस तरह से देखिए तो भगवान ही सारी काम क्रिया करा रहे, अंत्येष्टि क्रिया, शरीर लिवा ले गए, भगवान गए साथ में जमुना जी के तट पर, कंस का दाह संस्कार आदि हुआ, उसमें भगवान थे। शत्रु भी है तो क्या, लेकिन जो उचित कार्य है वो कराना चाहिए। तो भगवान इसके बाद सब क्रियाएं कराए। जो लौकिक क्रिया होती है वो कराए। इसके बाद भगवान गए कारागृह में, जहां देवकी वसुदेव अभी अरेस्ट थे, बंद थे। भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों प्रणाम किए वसुदेव जी और देवकी जी को, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनके चरण में माथा रखकर साष्टांग प्रणाम किए भगवान और श्री बलराम जी, लेकिन वे लोग कृष्ण को हृदय से नहीं लगाए। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ कृतसं वंदनौ पुत्रो सस्व जाते न संकितौ। उनके मन में यही भाव हो रहा था, कृष्ण बलराम ईश्वर हैं, नारायण हैं, शंकर जी हैं, इसलिए वो लोग आलिंगन नहीं किए। 11 वर्ष के बाद उस पुत्र से भेंट है, जिस पुत्र को आधी रात के समय वसुदेव जी पहुंचाए थे। कौन ऐसा पिता होगा जो देखते ही छाती से न लगा ले। लेकिन अभी अभी जो कुबले अभी का वध किए, कंस का वध किए, इससे भगवत भाव ज्यादा उभर गया वसुदेव जी और देवकी जी के मन में, ये भगवान है, भगवान है। इसी से उनको हृदय से नहीं लगाए। शंका मन रहे कि भगवान है तो भगवान को क्या हृदय से लगाना है, पुत्र भाव नहीं रहा। लेकिन भगवान कुछ ऐसी बात बोले गए, बाद में देवकी वसुदेव जो दोनों रोने लगे, देवकी जी के अस्तनों से दूध चुने लगा और वसुदेव जी तुरंत गोद में उठा लिए। भगवान ऐसी बात बोले और अपनी पुत्र स्नेह नहीं योग माया का संचार की हृदय ऐश्वर्य का भाव हटा करके पुत्र स्नेह उत्पन्न कर दिया। यह कथा कल कही जाएगी, कल इस कथा का समापन दिवस है। संस्कृत में इसको समाप्ति कहते हैं, समाप्त। सम का अर्थ समय और आप्त का अर्थ प्राप्त होना, समाप्त का अर्थ खत्म होना नहीं होता है, समाप्त का अर्थ होता है कंप्लीटली प्राप्त, तो आज पूरा प्राप्त हुआ ये अर्थ होता है। सम आप्त समाप्त, सम्यक आप्त या प्राप्त, तो कल सम्यक प्राप्ति होगी, आना चाहिए समय से। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणीप्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चाद्देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय श्री शुक उवाच पितरा उपलब्धार्थौ विदित्वा पुरुषोत्तमः मा भूदिति निजां मायां ततान जनमोहिने कंस तथा उसके अनुचरों का वध करने के बाद श्री कृष्ण और बलराम कारागृह में गए जहाँ उनके माता पिता बंद थे। तो भगवान ने वहाँ जाकर प्रणाम किए बलराम जी के साथ देवकी वसुदेव को, साष्टांग प्रणाम किए, परंतु देवकी और वसुदेव उन्हें जगदीश्वर समझकर हृदय से नहीं लगाए। द्वारका के परिकरों का ऐसा भाव है, मथुरा द्वारका के परिकर ऐश्वर्य भाव से युक्त रहते हैं, ब्रज में ऐश्वर्य भाव बिल्कुल नहीं, परंतु द्वारका और मथुरा में कभी कभी ऐश्वर्य भाव इतना अधिक उमड़ता है, अर्थात यह भाव कि श्री कृष्ण भगवान हैं, ईश्वर हैं, उस ऐश्वर्य के बाढ़ से माधुर्य दब जाता है कि कृष्ण मेरा पुत्र है या सखा है। जैसे अर्जुन, हम लोग पढ़ते हैं भगवद गीता में कि अर्जुन विराट रूप देखकर थर थर कांपने लगे और भगवान श्री कृष्ण से घबरा कर कहने लगे आप पुनः अपने ओरिजिनल रूप में हो जाइए, मुझे बहुत भय लग रहा है, मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं है। इस तरह से वे भगवान से बारंबार ये बात कहने लगे कि मैंने जो आपको यादव कहा, सखा कहा, आपसे मजाक किया, कई तरह की बातें बोला, आपके साथ खाया घूमा और बहुत प्रकार से अपशब्द बोल दिया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वही जो मित्रता के आवेश में अर्जुन ने किया था उसको वे अपराध मानने लगे। तत्वतः वे अपराध नहीं थे, भगवान को प्रसन्न करने वाले वह सब विचार और व्यवहार थे। यहां भी हम लोग देख रहे हैं देवकी वसुदेव में अपने पुत्र श्री कृष्ण के प्रति ईश्वर भाव उत्पन्न हो गया है। निरंतर असुर वध की बात सुनने के कारण और अंत में कंस के वध की बात सुनने के कारण वसुदेव जी के मन में यही भाव उत्पन्न हो रहा है कि ये भगवान है। और माता देवकी के भी इसलिए 11 वर्ष के वियोग के बाद भी हृदय में यह लालसा नहीं उमड़ पाई कि हमारा बेटा है, हमारा पुत्र है और हृदय से लगा लो, ऐश्वर्य भाव दबा रहा था। तो भगवान ने देखा कि हमारे माता पिता मुझ में ईश्वर भाव कर रहे हैं, तो वहां पर श्री कृष्ण अपने को थोड़ा फीका जैसा अनुभव करने लगे कि माँ मुझे गोद में नहीं ले रही है, पिताजी मुझे आलिंगन में नहीं ले रहे हैं, तो भगवान कुछ फीका सा अनुभव कर रहे थे। तो बताइए थोड़ा और धीरे धीरे घंटी बजा रहे प्रेम भक्ति जी, बताइए थोड़ा धीरे धीरे घंटी बजा रहे कोई भी पुत्र या देखे कि इतने वर्षों के वियोग के बाद माँ हमें हृदय से नहीं लगा रही है, पिता भी आलिंगन में नहीं ले रहे हैं, तो पुत्र को जरूर है फीकापन अनुभव होगा। श्री भगवान भी वात्सल्य रस के भोक्ता हैं, महारसी। वे चाहते हैं कि उनके माता पिता उनके प्रति वात्सल्य भाव रखें, बच्चा कहें और अपने हृदय का प्यार ढाल दें कृष्ण के लिए पुत्र भाव से। परंतु जब यहाँ पुत्र भाव संकुचित हो गया, ऐश्वर भाव हावी हो गया, तो भगवान ने अपनी जन्मोहिनी माया मतलब अपने स्वजनों को, अपने पार्षदों को जो मोह में डालने वाली है, मोह का अर्थ स्नेह में, श्री कृष्ण की स्वताई को भूल जाते हैं जिस शक्ति से, उस शक्ति का संचार भगवान ने किया तत्काल। और शक्ति का संचार करके इसके बाद कहने लगे, मतलब वात्सल्यमयी प्रीति उत्पन्न करने के लिए भगवान इस प्रकार बोलने लगे। वाच पितरा आदित्य साग्रज सात्वतर्षभ प्रश्रयावनत प्रीणन अम्बताति सादरम। भगवान ने बहुत सच गया करके वसुदेव जी के पास और माँ देवकी के पास, दोनों भाई कृष्ण बलराम, और उवाच इस तरह से बोले। प्रश्रयावनत विनय से झुके थे दोनों भाई और माता पिता में वात्सल्य प्रीति उत्पन्न करने के लिए संबोधन किए, अम्ब तात हे मां हे पिताश्री इस तरह से बोले। बच्चे का संबोधन माता पिता के हृदय में स्नेह पैदा करता है। संस्कृत के जो संबोधन है वे बड़े सार्थक संबोधन है। अम्ब का अर्थ होता है जो मुझे उदर में धारण की थी और अपने छाती का दूध पिला करके जिसने हमारा पालन किया है, अम्ब का इतना अर्थ होता है। अम्बा पता नहीं इंग्लिश में मदर का ये अर्थ होता होगा कि नहीं, लेकिन अम्बा का ये अर्थ है कि हमको जिसने उदर में धारण किया और अपने स्तन का दूध पिलाया उसको अम्बा का, इतना अर्थ होता है। और तात पिताजी को कहते हैं या अपने प्रिय को, हे अम्ब हे तात। ये भगवान संबोधन कर रहे हैं, श्री बलराम के साथ में खड़े। नास्मत्तो जो योस्तात नित्योत्कंठितयोरपि बाल्य पौगंड कैशोरा पुत्राभ्याम भवन क्वचित। हे तात, हे पिताजी, आप दोनों हम लोगों की चिंता करके नित्य मिलने के लिए उत्कंठित रहते थे, हमारी चिंता रात दिन आप करते रहते थे कारागृह में रहते हुए भी, और माता पिता को जो सुख मिलता है बच्चों से बचपन में, पौगंड में और किशोर अवस्था में, वह सुख आपको, आप दोनों को नहीं मिल पाया। बाल्य पौगंड कैशोरा, जो माता पिता बन चुके हैं वे इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों से एक सुख मिलता है बचपन में, पौगंड में, किशोर अवस्था में। बचपन का अर्थ है 1 से 5 बरस और पौगंड का अर्थ है 6 से 10 बरस और किशोर अवस्था का अर्थ है 11 से 15 तक। बच्चों से माता पिता को एक अद्भुत सुख मिलता है। घुमा दीजिए आरती, जैसे फीका लगता है। हरे कृष्णा, दे दीजिए आरती। तो भगवान कहते हैं कि माता पिता को बच्चों से जो सुख मिलता है बचपन में या पौगंड अवस्था में या किशोर अवस्था में, हम दोनों के द्वारा आप लोगों को वो सुख नहीं मिला। माँ जब किसी बच्चे को अपना स्तन पिलाती है, अपने पुत्र को, और उसे पुचकारती है, सुलाती है, बच्चा कभी कभी मान कर जाता है, माँ से रूठ जाता है, उसे उठाती है, खिलाती है, खिलौना देती है, यह एक सुख है वास्तव में। यह सुख न हो तो इस घर गृहस्थी में तो केवल मरना है वास्तव में। कुछ सुख भगवान ने बनाया है। तो श्री भगवान भी कहते हैं कि आप लोगों को यह सुख नहीं मिल सका हम लोगों से। दैव का ऐसा विधान, ईश्वर की ऐसी इच्छा, भगवान एक लोक भाषा में बोल रहे हैं, एक मनुष्य की लीला करते हुए कहते, दैव का ऐसा विधान कि हमारा जन्म हुआ और हमारे भाई का जन्म हुआ तो दूर देश में जन्म हुआ, आपके घर में जन्म नहीं हुआ। दोनों भाई ब्रज में जन्म लिए थे और माता पिता इधर कारागृह में थे। चाहते हुए भी, पुत्र चाहते थे कि माता पिता से भेंट हो, माता पिता चाहते थे पुत्रों से भेंट हो, लेकिन नहीं। दोनों ओर के असुख है का वर्णन भगवान कर रहे हैं। न हम लोगों से आपको कोई सुख प्राप्त हुआ और न आप लोगों का प्यार स्नेह हम दोनों को मिला। यद्यपि ब्रज में नंद और यशोदा का स्नेह वात्सल्य बहुत ही बड़ा था, परंतु फिर भी वसुदेव और देवकी के द्वारा वो स्नेह नहीं मिला। इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि वो स्नेह मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, हे पिताजी, हे माँ, वो सुख हम लोगों को नहीं मिला। तो दोनों ओर से दुखी, नित्योत्कंठितयोर अपि, नित्य उत्कंठितयो अपि, कितनी बड़ी लालसा होगी वसुदेव जी की जिस पुत्र को वे रात्रि के समय पहुंचाए आए थे नंद बाबा के यहां। कितनी उनकी चिंता रहती होगी कि पुत्र कैसे है, स्वस्थ है, कैसे है, कब भेंट होगी। और मां देवकी उत्कंठित रहती थी, देवकी ने केवल एक बार दूध पिलाया था कृष्ण को कारागृह, और उसके बाद उसको कोई अवसर नहीं मिला। उसको थोड़ा कम कीजिए। तो भगवान ने स्नेह उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। न लब्धो दैव तयो वासो नौ भवदन्ति के। दैव हतयो, ऐसा दैव का विधान था कि आप दोनों के निकट हमको आवास नहीं मिला। यम बाला पितृगे हस्ता विन्दन्ते लालिता मुदा मुदम। माता पिता के घर पर रहकर बच्चों का जो लालन पालन होता है और उनको जो महान आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद वह सुख है आप दोनों के द्वारा हमें नहीं मिला, दोनों भाइयों को नहीं मिला। यह अफसोस है, हम लोगों से आपको सुख नहीं मिला और आप लोगों का स्नेह प्यार नहीं मिल पाया बचपन में हमें। भगवान यहां पर कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं कि वसुदेव जी ये समझें कि यह नंद महाराज को पिता नहीं मानता है, मुझको मानता है, यह भाव। और भगवान ऐसे बोल रहे हैं, वास्तव में तो दोनों के पुत्र हैं, यशोदा जी के गर्भ से भी जन्मे थे भागवत में संकेत। लेकिन नंद बाबा के यहां उनको पिता कहते हैं और वसुदेव जी के यहां इनको पिता कहते हैं। आगे कहते हैं, सर्वार्थ संभव देहो जनितः पोषितः यतः न तयोर जाति निर्वेशम पित्रोर मर्त्यः शतायुषः। जिन माता पिता ने बहुत ही प्रयास से और प्रेम से इस देह को जन्म दिया है और पोषा है, सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितः यतः। यह मनुष्य शरीर सब अर्थ देने वाला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष जितनी भी वस्तुएं हम प्राप्त करते हैं मनुष्य शरीर से मिलती हैं। और मनुष्य शरीर को किसने जन्म दिया? माता पिता ने। जनित, दोनों के प्रयास से शरीर का जन्म होता है, और पोषित पालन होता है। माता पिता किस उत्साह और परिश्रम से बच्चे का पालन करते हैं यह सब देखा गया है। हमने देखा है कहीं गांव में कोई व्यक्ति अच्छे गरीब होता है, फिर भी वो ऋण लेकर के अपने बच्चे की दवाई कराता है, या कपड़ा या भोजन जुटाना। बड़ा होने के बाद हो सकता है हम अपने माता पिता के द्वारा किए गए उपकार को भूल जाए, लेकिन जो अच्छा व्यक्ति होगा वो कभी नहीं भूल सकता है। वास्तव में माता पिता का उपकार अच्छा व्यक्ति नहीं भूल सकता है। तो शास्त्रों में यह बात कही गई है, जहां पर आसक्ति की बात आती है तो कहा गया है कि पुत्र में स्त्री में आसक्ति होना माया है, लेकिन माता पिता में आसक्ति होना इसको माया नहीं कहा गया है, बल्कि उन लोगों की बहुत प्रशंसा की गई है। भगवान श्री राम अपने पिता की बात मानकर 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। आज तो अपने पुत्र को कोई पिता कह दे कि एक दिन के लिए निकल जाओ घर से, तो पिता को ही निकाल देगा, हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे निकलने का समय है, तुम जाओ। पिताजी ने डायरेक्ट नहीं कहा, दशरथ महाराज ने डायरेक्ट नहीं कहा भगवान को, परंतु ये सुने कि इन्होंने वर दिया है माता कैकेयी को, बस पिता को प्रणाम करके और वन में निकल गए। कोई राज्य का लोभ नहीं। भगवान आए थे शिक्षा देने के, मनुष्य को राज्य धन आदि के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। वनवास एक बहुत अच्छी स्थिति होती है, वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं, उनसे सत्संग होता है, भगवत चर्चा होती है, जीवन का असली लाभ मिलता है। तो भगवान अपने माता पिता की बात मानकर वन में चले गए। श्रवण कुमार तीर्थ कराए थे, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अपने माँ की बात मानकर रहते थे, नहीं तो वृंदावन भाग रहे थे। माता सची ने कह दिया, बेटा मैं तुमसे यही मांगती हूँ कि तुम जगन्नाथपुरी में रहो, यहाँ रहने से कभी वहां से तुम गंगा स्नान करने के लिए आओगे अथवा यहां से भक्त रथ यात्रा पर जाएंगे तो तुमसे भेंट होती रहेगी और तुम्हारा समाचार संवाद मिलता रहेगा। तो भगवान ने अपने परम प्रिय धाम वृंदावन में नहीं गए, एक बार गए घूम करके और रहने लगे जगन्नाथपुरी में माता की बात मानकर। कभी भी कोई भक्त नवदीप से जाता था जगन्नाथपुरी तो अपने माँ का समाचार खूब पूछते थे और रोने लगते थे उसकी याद करके, और माँ के लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद और प्रसादी वस्त्र माला भेजा करते थे। जबकि भगवान चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने माँ का इस तरह से आदर किया। उसका तो हृदय ऐसे ही टूट गया था, बेचारी विधवा हो चुकी थी और उसके बड़े लड़के विश्वरूप भी सन्यासी हो गए थे, निमाई थे, निमाई भी घर छोड़ दिए। अतः चैतन्य महाप्रभु का यह कर्तव्य था कि वे माँ की देखरेख करें। हम लोग श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, तो यह बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है कि अपने माता पिता के पास भगवान कृष्ण और बलराम अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं और उसी संदर्भ में कहते हैं कि सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितः जतः। सब कुछ की प्राप्ति इस देह से होती है और यह देह जिनके द्वारा जन्म दिया गया, पोषा गया, न तयोर जाति निर्वेशम पितरोर मर्त्यः सतायुषा। यदि कोई 100 वर्ष जिए युवक रह करके और माता पिता की रोज कई तरह से सेवा करे, कई प्रकार से, फिर भी माता पिता की सेवा का वो ऋण नहीं चुका सकता, इतना अधिक ऋण है उनका वास्तव। ये भगवान के वाक्य हम सुन रहे हैं, कोई सुखदेव गोस्वामी का लिखा हुआ नहीं है, या भगवान वेदव्यास देव साक्षात भगवान बोल रहे हैं। जिन माता पिता ने मिलकर इस शरीर को जन्म दिया और इसको पोसा, 100 वर्ष तक लगातार और काम छोड़ करके केवल माता पिता की सेवा ही करता रहे व्यक्ति, तभी भी वह उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, इतना ऋण है वास्तव में माता पिता का। और जैसा मैं शुरू में कहा, कोई महान पुरुष या शुद्ध बुद्धि वाला ही इस बात को समझ सकता है। तय न जात निर्वेश पितृ मर्त्य सतायुषा सतायुषा। एक दो घंटे सेवा कर दे व्यक्ति तो अब वो मानता है कि मैं तो बहुत कर रहा हूं। एक बार मैं एक व्यक्ति से पूछा, या माता पिता की सेवा करते हैं, तो उसके मन में ऐसा अहंकार था कि वो तो श्रवण कुमार है और हाँ खूब करते हैं, खूब करते हैं। तो क्या क्या करते हैं? चरण दबाते हैं पिताजी का? नहीं, ये तो नहीं करते हैं, चरण नहीं दबाते, और पानी देते हैं पिताजी को पीने के लिए? तो नहीं, वो तो पानी अपने आप ले लेते हैं, और क्या सेवा करते हैं? हम पिताजी को कभी गाली नहीं दिए, कठोरता ही बोले यही सेवा है, वो अपने से बता रहे थे। मैंने कहा हम बहुत सेवा करते हैं, कभी हम पिताजी को गाली नहीं दी, इसी को बहुत बड़ी सेवा मान रहे थे। कलयुग है वास्तव में, बुद्धि नष्ट हो गई है लोगों को, नहीं समझते। माता पिता के उपकार को मानना चाहिए, भगवान यहां कह रहे हैं। यस्तयोरात्मज कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिं दद्यात्म प्रत्य स्वमांसं खादयन्ति। वेद शास्त्र के नियम को बनाने वाले, सारे जगत में मनुष्यों के लिए और देवताओं के लिए नियम बनाने वाले भगवान बोल रहे हैं, जो व्यक्ति कल्प समर्थ है, जो पुत्र समर्थ है, सब तरह से जिसके पास आरोग्य है, स्वस्थ शरीर है और धन भी है, और ऐसा हो करके भी आत्मना च धने न च, देह से और धन से यदि माता पिता की सेवा नहीं करता है, तब जमराज के दूत उसी का मांस काट करके उसको जबरदस्ती खिलाते हैं नरक में। यदि कल्प पुत्र है, समर्थ है, पैसा भी है, शरीर भी ठीक है, और फिर भी माता पिता की सेवा नहीं करता है, तो प्रत्य मरने पर नरक में स्वमांसम खा दियंती, वहां पापियों को भी खूब भूख लगती है नरक में, और जो भोजन मांगते हैं जमराज के दूतों से, तो उस पापी के देह में से ही तलवार से काट कर कहते हैं ये खाओ, और खाना पड़ता है। स्वमांसम खा दियंती, अपना मांस काट, कितनी पीड़ा होती होगी उस समय। यह नियम भगवान बना रहे, बता रहे, और भगवान ऐसी कल्पना नहीं कर रहे कि ऐसा होता होगा, वही नियम बनाने वाले हैं, वही सब कानून कायदा, और जमराज तो उनके नौकर हैं, उनकी आज्ञा पर काम करते रहो। उन लोगों को एकदम तैयार रहना चाहिए जो लोग माता पिता की सेवा नहीं किए, नहीं करते, तो मांस काट काट करके खाने को दूंगे, यह एक पनिशमेंट हुआ, इसी तरह के बहुत बहुत दंड मिलेगा उन लोगों को। अतः जिन लोगों के माता पिता हैं और जिनका शरीर स्वस्थ है, धन भी है, उन्हें अपने माता पिता की सेवा खूब कर लेनी चाहिए। रामायण में वर्णन है और श्रीमद् भागवत में भी है कि लोग कब तक माता पिता को मानेंगे कलयुग में। नरमान ही मात पिता तब लोग, ससुराल प्यारी नहीं जब लोग। जिस दिन से ससुराल जाना चालू करते हैं कलयुग में लोग, उसी दिन माता पिता को भूल जाते हैं, अब सारा स्नेह उनका अपने वाइफ में हो जाता है। माता पिता खा रहे हैं कि मर गए हैं, बीमार हैं, कुछ नहीं करते। एक दिन मैं था, कुछ वर्ष पहले अमेरिका में फादर डे पड़ा था, जून में की कम, मैं पूछा है कि फादर डे का क्या मतलब होता है, तो पिता का दिन है। एक व्यक्ति से मैं पूछा कि आप क्या करते हैं, फोन कर लेता हूं पिताजी को,